हरे कृष्ण। तो आज संख्या काफी कम है वैसे, लेकिन उत्साह रहना चाहिए। पिछला महीना जो है वो हम लोगों ने साधना का महीना था हमारा, जिसे हम लोग कार्तिक मास कहते हैं। तो आप लोगों में से कई लोग गए होंगे कार्तिक यात्रा, गए ना? कितने लोग गए थे कार्तिक यात्रा के? काफी लोग। तो उस महीने में जो है हम लोग क्या कर रहे थे, अपनी साधना कर रहे थे, भक्ति बढ़ा रहे थे। इस्कॉन आपको कार्य देती रहती है कि यहां पर कभी मैं देख रहा हूं कई नए लोग भी हैं, इसलिए हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि इस्कॉन में इससे पहले मैं कई संस्थाओं में था, जैसे मैं राधा स्वामी में था, निरंकारी संस्था में था, ब्रह्म कुमारी, कई ऐसी संस्थाओं में मैं था। तो मैंने वहां देखा कि वहां सब एक ही काम होता है कि गुरु प्रवचन देते हैं और उसके बाद प्रसाद होता है, उसके बाद फिर अपने अपने घर जाओ या छोड़ घर, किसी से इतना कुछ वो मिलन नहीं होता है, ना कुछ आपकी भक्ति के बारे में कि आपकी कैसे भक्ति का प्रोग्रेस हो उसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं होती। वहां कोई कोई एक हाथ अगर मिल जाता है कभी कभार तो ऐसा होता है, लेकिन इस्कॉन में जब मैं आया तो मैंने देखा कि हर व्यक्ति यहाँ पर गुरु की तरह पुश करते रहते हैं कि आपने माला की? नहीं, माला तो नहीं की। आपको माला करना चाहिए। कितनी माला करते हैं? कहते एक माला। एक माला। अरे हम लोग 16 माला करते हैं, आप 16 माला करो। हर बार में पुश करते रहते हैं। तो इससे क्या है, लोग बहुत तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं और हर वक्त आपको क्या है, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, कोई ना कोई कार्य मिलता रहेगा। कितने फेस्टिवल होते हैं यहाँ, इतने फेस्टिवल होते हैं मैंने किसी संस्था में नहीं देखा। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है यहाँ पे। तो पिछले महीने में पूरा महीना किसका था, हमने दीपदान किया, परिक्रमा किया और वृंदावन कई बार गए। तो ये सब जो है मेरा पिछले महीने, लेकिन अभी जो ये महीना स्टार्ट हो रहा है इसका हम लोग गीता जयंती महीना कहते हैं, क्योंकि इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, जो महीना दिसंबर का हुआ वो गीता जयंती का महीना है। तो ये पूरा महीना जो है हम लोग गीता जयंती का मनाते हैं और इसमें प्रत्येक भक्त को जोड़ते हैं सेवा के लिए। पिछला महीना साधना का, अब सेवा का। इसमें हर भक्त को जोड़ते हैं सेवा के लिए कि वो जाए और ग्रंथों का वितरण करें खुद पर्सनल। तो कई लोग जो है अपने रिश्तेदारों को देते हैं, पड़ोसियों को देते हैं, या आसपास में जो शॉप कीपर्स हैं वगैरह उनको देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पुस्तक वितरण होता है और ये बहुत लार्ज उसमें जो क्वांटिटी में होता है। अभी जो है हम लोग यहाँ इस मंदिर का लगभग टारगेट है कि 4 लाख गीता हम लोग बांटे। दूसरे दूसरे मंदिर का अलग अलग टारगेट है। तो आप कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये क्यों ऐसा है, क्यों हम लोगों को ये बांटने के लिए दिया जा रहा है। तो ये है, हमारी पूरी परंपरा ऐसी चली है। हमारी परंपरा में सबसे पहले श्यामानंद प्रभु थे और जो कि महाप्रभु के पार्षद थे, वो उसमें से 3 है, एक श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य। तो इनको भी जो है कार्य दिया गया था। महाप्रभु ने अपने पार्षदों को बोला कि आप लोग जो है ग्रंथ लिखो, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम किसी को अगर कुछ बोलते हैं तो वो सुन लेता है लेकिन बाद में जाकर भूल जाता है, लेकिन अगर हम किसी को ग्रंथ दे देते हैं तो वो पढ़ेगा और उसको हमेशा फिर स्मरण रहेगा। उसको बोलेंगे इसको आप पढ़ा करो डेली, कुछ हमारा प्रवचन काम करेगा और बाद में जो है श्रील प्रभुपाद जी काम करेंगे। क्योंकि जिससे घर में भी ये ग्रंथ चला गया, यानी कि श्रील प्रभुपाद जी घर में चले गए। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माई हार्ट, ये पुस्तक वितरण जो है मेरा हृदय है। तो यानी कि अगर आपने किसी को एक पुस्तक दे दी तो श्रील प्रभुपाद जी का हृदय दे दिया हमें। फिर अपवाद जी का हृदय उसके घर पे चल गया है। तो घटना ऐसी बहुत सी है कि यह भगवद्गीता जो है इसने हजारों हजारों की तादाद में लोगों को भक्त बनाया है केवल इस गीता को पढ़ने से। उससे पहले आपने आप कह सकते हैं कि हमने कई गीता पढ़ी, मैंने भी कई गीता पढ़ी, भगवद्गीता, गीता प्रेस की और कई कई जो है कई लोगों की आती गीताएं हमने गीता पढ़ी, लेकिन कभी ऐसा नहीं आया मन में कि हम भक्त बन जाए। लेकिन इस गीता को पढ़ के आप देखिए कितने लोग भक्त बने हैं। कुछ घटनाएं हम आपको सुना देते हैं इस श्री गोपाल जी की ये भगवद्गीता यथारूप। अब बोलेंगे आपकी आप अपने गुरु का प्रचार कर रहे हैं हा? कि आपके गुरु हैं क्योंकि इसलिए आप प्रचार कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इससे पहले श्री गोपाल जी क्या किसी को मैं गुरु नहीं मानता था, मैं गुरु गुरु रूप विश्वास नहीं था, केवल मैं जाता था मंदिर में बस प्रणाम कर दिया, भगवान को मानते हैं बस, कोई विश्वास नहीं गुरु में। तब एक क्या हुआ था कि एक बार एक मैं बहुत परेशान टेंशन में घूम रहा था, तो मैं अपनी शॉप पे बैठा था तो एक व्यक्ति आए, वो भक्त काफी है, अच्छा उनका आध्यात्मिकता में काफी इंक्लाइंड था, तो वो कह रहे थे कि आप बहुत परेशान से दिख रहे हो। मैंने बोला हाँ कुछ परेशानी है, आपको क्या होता है? कहते अच्छा ठीक है मैं बताओ आप क्या परेशान हो, लेकिन मुझे मेरे पास सारी परेशानियों का एक हल है। तो मैंने बोला आपका क्या क्या हल है? तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे पास आ जाओ मंदिर में, उनका एक छोटा मंदिर था, कह रहे हम लोग रोज सत्संग करते हैं, आप वहां पर आ जाओ तो मैं आपको कुछ दूंगा। तो मैंने देखा सत्संग चल रहा है, फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने, तो सत्संग समाप्त हो गया, फिर मैं गया, मैंने बोला अच्छा आप बोल लेते हैं कि आने के लिए, बताइए आप क्या देना चाहते हैं? तो उन्होंने मुझे ये गीता दी, मैंने बोला कि ये गीता पढ़ो इससे तुम्हें सारी परेशानियों का हल मिलेगा। मैंने बोला इसमें मेरी क्या परेशानियों का हल मिलेगा, मैं किसी किस टेंशन में घूम रहा हूँ और ये क्या दे रहा है? उन्होंने बोला आप पढ़ो दो विश्वास तो करो, ऐसा एक बार पढ़ लो। तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं उसको ले जाके पढ़ने लगा। और उसको गीता कहाँ से मिली थी? हरिद्वार से लेकर आया था। तो उन्होंने ना कि जैसे मैंने इस गीता को पढ़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। मैंने चलो ठीक है अच्छा। और फिर मैंने जब उन्होंने गीता दिया तो मैंने उसको पढ़ना आरंभ किया, और जैसे मैंने पढ़ना आरंभ किया तो वास्तव में मुझे लगा कि ओह इस गीता में वास्तव में मेरी सारी परेशानियों का हल है। फिर मैं गीता को अपने लाइफ में मैंने अपना लिया और मैं उसको खुद खरीद लिया गीता को, और मैं पढ़ता रहता था इसलिए, और पढ़ते पढ़ते इतना इस गीता का नशा आया। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं कभी गुरु बनाऊंगा तो श्री प्रभुपाद जी को। तो तब मैं एक बार वृंदावन गया तो मैंने देखा, मालूम पड़ा कि श्री प्रभुपाद जी इस पृथ्वी से जा चुके हैं उनके। तब मैं फिर राधा स्वामी संस्थान से जुड़ गया था, राधा स्वामी और निरंकारी फिर ब्रह्म कुमारी वगैरह सबसे काफी ज्ञान लग गया, लेकिन वहां से मेरी दिशा लेने की इच्छा नहीं होती थी। मैं सोचता था कि पता नहीं क्यों मैं मन लग रहा है। तो एक भक्त मेरा वहां पे एक व्यक्ति था, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसका नाम सुमन था। तो उस सुमन ने बोला कि यार मुझे समझ नहीं आ रही, यहाँ पे लोग एक महीने में आते हैं दिशा नाम नान बोलते हैं, वो लोग दिशा को कहते नाम नान ले लेते हैं, आप क्यों नहीं नाम नान ले रहे हो, आपको यहाँ 4 साल हो गए सेवा करते करते। मैंने बोला कि यार सुमन मैंने वैसे आज तक ये बात किसी को बताई नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों एक गुरु जी है जिनका नाम प्रभुपाद जी है, मैं उनसे बहुत अट्रैक्ट हूँ, उनकी मैंने गीता पढ़ी, मुझे बड़ा नशा है उनका, और यहाँ गुरु का मैं रोज प्रवचन सुन रहा हूँ, मुझे कुछ अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला अरे यार कहाँ तुम फंस रहे हो, ये तो सबसे ऊंची संस्था तो यही है, तुम कहाँ फंस रहे हो? मैंने बोला कुछ भी है पता नहीं, लेकिन मेरे क्यों यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तभी फिर उनके एक सीनियर व्यक्ति आया तो उसने बताया, मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोला अरे तुम क्या कर रहे हो यार, क्या तुम प्रभुपाद जी के बारे में जानते हो, तो खाली राम और कृष्ण का चर्चा करते हैं, राम कृष्ण क्या है, अरे तुम हमारे गुरु से दिशा ले लो नाम नाम ले लो तो वो तुम्हें राम और कृष्ण से बड़ा बना देंगे। तभी मुझे एकदम शौक लगा, मैंने बोला अरे यार मैं गलत जगह पे आ गया, क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि कैसे कैसे जो है लोग बोलते हैं, जो ढोंगी लोग होते हैं वो इस तरीके से प्रचार करते हैं कि भगवान से बड़ा बना देंगे आपको। तब मैंने सोचा भगवान अब बहुत हो गया, अब मुझे बचा लो आप, अब मुझे इस कुछ अच्छे लोगों से जोड़ दो। तभी की बात है कि पीतम्बरा में मैं रहता था, एक भक्त है तो उन्होंने बोला कि मैं प्रचार करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला हाँ ये आप प्रचार करिए यहाँ पे, मैं मंदिर में सेवा कर रहा था वहां के लोकल। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला आप कहाँ से आए? तो उन्होंने बोला कि मैं हरे रामा हरे कृष्णा से आया हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बोला अरे मैं आप ही का तो वेट कर रहा था। उन्होंने बोला मैं आपके लिए तो आया हूँ। तो मुझे एकदम लगा जैसे भगवान ने ही इसको भेजा है। अब तो फिर उन्होंने बताया कि ये इसको, ये एक संस्था है जिसके श्रील प्रभुपाद जी फंडराचार्य हैं, उसका नाम इस्कॉन है ना, और वो दिल्ली में भी मंदिर है उनके। उन्होंने बोला अच्छा दिल्ली में भी मंदिर है? कहते हाँ। फिर कहते हैं वो सामने जो घर है ना वो इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, आप उनसे जुड़ जाओ। और मुझे बहुत खुशी हुई, कह रहे वाह अब मैसेज रह गया। और फिर जब यहाँ पे आया तो यहाँ पर मैंने देखा कि हर व्यक्ति जो है किस तरीके से व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भक्ति में बढ़ाता रहता है। ये कारण मुझे बहुत बहुत अच्छा हुआ कि कितना अच्छा है यहाँ पे। वहां तो सिर्फ केवल गुरु से मतलब है, और गुरु से मतलब नहीं, गुरु जी बहुत दूर बैठे हुए हैं, शिष्य बेचारे इतनी दूर बैठे हुए हैं। एक बार में सबका नाम नाम हो गया, प्रवचन तथा नाम नाम उसमें लिखा होता है कि प्रवचन के बाद आपको नाम नाम दिया जाएगा तुरंत। आप ना गुरु जी को जानते हो ना गुरु जी आपको जानते हैं, एक पूरे पंडाल में आपको बैठा दिया, पांच शब्द बता दिए, बस आप नटो, उस बात गुरु जी से कोई मतलब नहीं है। गुरु जी को खुद पता नहीं कि हमारे शिष्य हैं। तो इस तरीके से फिर मैं यहाँ पे बहुत चीजें अटैक्ट की, और फिर धीरे धीरे जो है हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे जो वो कार्य हो गया कि हम, मैं और मेरा भाई जो है दोनों कर्मचारी होते हैं। और हमारे जितने भी खानदान में जैसे चाचा ताया जो भी पता नहीं क्या क्या रिश्ते होते हैं, सब रिश्ते भूल गए हैं क्योंकि काफी दिनों से रिश्ता से अटकड़ गए। तो जितने भी होते हैं भांजी हमें भांजा भांजी सब, तो ये सब जितने भी खानदान में हैं सब लोग आज माला कर रहे हैं। और वो सब कैसे हुआ? सिर्फ एक गीता खरीदने से, ये सर्व गीता खरीदने से। तो ये गीता जो है ये शिला प्रपात जी का हृदय है स्वयं, है ना। तो ये शिला प्रपात जी जब आपके घर में पहुंच गए तो क्या आपको भक्त नहीं बनाएंगे? जिसने भी गीता खरीद ली, जो भी गीता ले रहा है, वो अवश्य ही एक दिन भक्ति से जुड़ जाएगा। और चाहे वो यहां जुड़े या किसी और जगह जुड़े। एक बार मैं हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे मोतीबाग में पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक व्यक्ति कहता है इतना उतरा तो मुझे दो, मुझे दो किताब, मुझे दो। तो हमने बोला अरे भागते भागते को गए, तो हमने बोला कि ला लाओ मुझे दो। तो हमने गीता दी, तो कहता हाँ ला लाओ, बताओ क्या क्या सेवा करूँ, क्या सेवा करूँ। हमने बोला आप सारी ले लो, कहता सारी दे दो। मैं सारी गाड़ी में डाल दी है ना। और फिर उसने क्या, उसने बोला कितने गए? हमने बोला पांच गीता दी हमारे हाथ में। हम बता रहे थे यार पांच ही क्यों है, जमा होनी चाहिए। मैंने बोला 500 रुपये, कहता ठीक है 500 रुपये लो, तुरंत दे दिए। तो हमने कहा यार पैसा अब इतना इतना क्यों उतावले हो रहे हैं गीता लेने के लिए, क्या कारण है? कह रहे हैं कि पिछले साल मैंने इसी लाइट पे, दिसंबर का महीना था, इसी लाइट पे मैंने आपसे गीता खरीदी थी। अच्छा फिर कहते हैं उस समय मैं न्यूजीलैंड जा रहा था, पूरे रास्ते में मैंने जो है गीता पढ़ी और न्यूजीलैंड में जाके भक्त बन गया। तो सच है ऐसी कई घटनाएं हैं, अगर हम आपको बताएं तो उसे घटनाओं से सारा ये प्रवचन खत्म हो जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई घटना हो। तो और हमारे जो प्रेजिडेंट हैं इस ग्रेस मोहन रूपापुरी जी, एक बार वो अपने भाई, उनका चाचा का लड़का है, उनके यहाँ गए, वो चाचा जी के लड़के यहाँ गए, तो वहां पर एक गीता टेबल पर रखी हुई थी, तो वेट कर रहे थे वो। तो उन्होंने गीता देखा कि बड़ी अच्छी गीता लग रही है, तो उन्होंने उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ना शुरू किया तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला ये बहुत अच्छी गीता है, मैंने तो आज तक ऐसी गीता पढ़ी नहीं, तो क्या मैं ये ले जाऊं? तो बोला हाँ ले जा ले जा, हम लोग तो वैसे यूज नहीं करते हैं। तो बोला ठीक है। तो मोहन रूपा जी ले आए गीता को और वो पढ़ने लगे। पढ़ते 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 उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने उनको मालूम पड़ा कि कनॉट प्लेस में एक गाड़ी लगती थी हमारे, पहले अभी कुछ साल पहले वो बंद हुई है, पहले लगती थी। तो वहां पर जो है हमारे फुटफॉल लैब के जो इंचार्ज हैं बलवंत, तो सबसे पहले उनसे मिले वो, उन्होंने बातचीत किया। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे जो है इस्कॉन संस्था है, तो वो इस्कॉन से जुड़ गए और बाद में वो ब्रह्मचारी बन गए और आज इस मंदिर के प्रेसिडेंट है। अच्छा, धीरे धीरे आ जाते हैं उस पॉइंट में। तो एक हमारे भक्त, अगर आपने सुना होगा उनका प्रवचन, कई बार दिया होगा चिदानंद प्रभु, कई बार प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं और आपके सारे प्रश्नों का हल उनके पास है। तो फिर क्या हुआ कि वह भी एक बार एक लाइब्रेरी में गए, तो लाइब्रेरी में उन्होंने देखा कि वो पुस्तक ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते उनका एक जगह हाथ पहुंच गया, उन्होंने निकाला तो श्री प्रभुपाद जी की किताब थी और उन्होंने वो किताब पढ़ी तो उनको इतना अच्छा लगा, वो कहते कि आज तक मैंने ऐसा ग्रंथ नहीं पढ़ा है। तब वो उन्होंने इस्कॉन से पत्राचार किया, उन्होंने किताबें मंगाने लगे बाय पोस्ट, तो फिर वो किताबें उनके आने लगी, तो धीरे धीरे वो बहुत अट्रैक्ट हो गए श्री प्रभुपाद से। उन्होंने सोचा कि उनके उस समय चित्र नहीं आता था इसमें, तो उन्होंने सोचा कि ये कोई बहुत जवान व्यक्ति होगा जो कि मतलब इस संसार से संघर्ष कर रहा है, इतना भयानक उन्होंने लिखा है और इसके देखो बाप रे बाप, ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा। और जब उन्होंने उनका फोटो देखा तो ये बूढ़े व्यक्ति, बोला बाप रे बाप ये है इतना बूढ़ा व्यक्ति लेकिन इस तरीके से गरजता है जैसे कोई जवान भी नहीं गरज सकता। तब उन्होंने धीरे धीरे वो इस्कॉन के संपर्क में आए और भक्त बने, आज लगभग 25 साल से वो ब्रह्मचारी हैं हमारे मंदिर में। ऐसे बहुत से हैं ब्रह्मचारी कई बने हुए यहाँ पे, यहाँ है पूरे वर्ल्ड में है, केवल बुक्स बढ़ गए, भक्त बन गए, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक इस तरीके से जो कमाल करती है। एक बार एक व्यक्ति, एक यंग माता जी थी, तो वो क्या है पुस्तक वितरण कर रही थी रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन में भी जाती थी, ट्रेन में पुस्तक वितरण कर रही थी, हम लोग भी ट्रेन में जाते हैं कई बार पुस्तक वितरण करने, आज भी हमारे भक्त लोग रहते, तो करते 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 एक व्यक्ति को पता कि या भी लीजिए गीता कृष्ण बुक थी, उन्होंने बोला कि ये बुक लीजिए, तो वो व्यक्ति इतना जैसे जल्लाद होता ना ऐसा, उसने किताब को फटका और लाते लाते मारी हुई और उस माता जी के बाल पकड़ते हुए घसीटते हुए ट्रेन के बाहर फेंक दिया उसने, और माता जी के हाथ पांव में क्रैक हो गए, चोट लगी, तो वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। और फिर वह जैसे ही उसने देखा कि थोड़ा सा मैं ठीक हुई हूँ, उसने तुरंत फिर जाके जो है वो, हालांकि पट्टी उट्टी है सब कुछ है, फिर जाके पुस्तक ग्रहण करने लग गई हूँ, इतना उत्साह था उसके अंदर। और इस व्यक्ति ने जिसने वो कृष्णा बुक फाड़ दी थी और लाते मार दी थी, तो बुरी हालत हो गई थी कृष्णा बुक की, लेकिन वो किताब लेके गया, उसने उठा दी किताब अपने बैग में डाल दी और उसने बोला कि देखो, और घर पे जाके गया और खूब बखान कर रहा था कि आज एक लड़की आई थी मैंने उसे बहुत मारा, बहुत खुशी से बता रहा था अपनी पत्नी को, तो पत्नी से बहुत प्रेम करता था वो, और उसने जो है वो किताब जाके टेबल पे पढ़ दी, तो क्या हुआ कि उसकी जो नौकरानी आई, नौकरानी ने देखा कि अरे साहब कोई किताब लाए हैं लेकिन किसी तरीके से फट गई है, तो उसने क्या करा सारी किताब पे टेप लगा दिया, दोबारा जोड़ दिया और उनके लाइब्रेरी में रख दिया, जो उनके घर में लाइब्रेरी थी उसी में किताब रख दी। तब क्या हुआ कि समय आया, इतना समय खराब आया उसका कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया और लड़की थी वो भी जो है वो घर छोड़ के भाग गई किसी व्यक्ति के साथ, और लड़का भी जो है वो अलग हो गया, उन्होंने बोला मैं शादी कर रहा हूँ और मैं साथ में नहीं रह सकता आपके, तो ये बिल्कुल अकेला हो गया और इतना फ्रस्ट्रेट हो गया सोचने लगा कि ये सब एकदम अचानक मेरे साथ क्या हो गया, बहुत परेशान हो गया, रोने लग गया कि हे भगवान आपने क्या करा। तो उसको याद आया कि अगर बहुत परेशानी हो तो कुछ आध्यात्मिक चीज पढ़नी चाहिए, कुछ बाइबल वगैरह पढ़नी चाहिए, तो ढूंढ रहा था कि मैं बाइबल पढ़ू, अचानक उसकी हाथ उस कृष्णा बुक पर पहुंच गया, उसने बोला अरे ये कौन सी किताब है, तो उसे याद आया कि अरे ये तो वही किताब है जिसको मैंने फाड़ के फेंका था उस लड़की को मारा था, लेकिन यहाँ पे कैसे आ गई, मैं तो उसे बिल्कुल चिट्ठी लगा दिया था इसके और ये ठीक कैसे हो गई, टेबल लगा दिया किसी ने, चलो जो भी है देखता हूँ उसमें क्या है। तो वो जब पढ़ने लगा कृष्णा बुक, तो ये चैप्टर है जो कि कंस को वसुदेव जो है प्रवचन दे रहे हैं, आत्मा और शरीर का ज्ञान दे रहे हैं, तो वो पढ़ने लग गया। तो उसने पढ़ा तो कहता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है ना, इस शरीर से बदलता है। तो बहुत खुश हो गया, कहता इसका मतलब मेरी पत्नी जिंदा है, वो मरी नहीं, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं है। तो बोला अरे वाह, मैं उसके बाद जाना चाहता हूँ, मैं उसके बाद जाना चाहता हूँ, ये तो बड़ी वासी बात है। सोचने लगा, तब जो है उसने कहा कि चलो मैं और आगे पढ़ता हूँ। करते 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 वो उसने कृष्णा बुक से बहुत अट्रैक्ट हो गया, बहुत उसका अटैचमेंट हो गया। तो उसने ऑफिस में छुट्टी ले ली कि दो दिन की मेरी छुट्टी दे दो, मैं कुछ मेरी तबीयत खराब है कह के ना, उसने दो दिन की छुट्टी ले ली और दो दिन में वो कृष्णा बुक से पढ़ता था। और उसे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, कहता कि ये कहाँ पे ऐसी संस्था है कि जिससे मैं जुड़ जाऊं, ये कौन है, ये इतना अच्छी, इतना अच्छा लेख लिखा है, इस व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूँ, उससे जुड़ना चाहता हूँ। तभी वो ढूंढ रहा था लेकिन उसको मिला नहीं। एक बार एक पोलैंड में, पोलैंड में है ना वो फेस्टिवल होता है, पोलैंड का फेस्टिवल होता है, उसमें बहुत बड़ा रॉक शो होता है। तो वहां पर रॉक शो हुआ तो वो भी गया हुआ था पोलैंड। पोलैंड में उसने देखा कि अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हरे कृष्णा रॉक शो हो रहा है, ये बड़ा अच्छा। तो उसने देखा कि वही लड़की, जिस लड़की उसने मारा था, तो वो लड़की उसको दिखाई दी। तो बहुत खुश हुआ, कहता मैं इस लड़की से मिलना है, लड़की से मिलना है, मैं से बात करना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि उन्होंने बुलाया उसको कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो वो लड़की गई, कहती हाँ बताइए। तो उसने बताया कि आपने मुझे पहचाना। हम बोला नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। तो उसने तुरंत चरण पकड़ लिए कि मैंने तुम्हारे पर बहुत अत्याचार किया है, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। चरण पकड़ लिया उसने। तो उसने लड़की ने बोला कि लेकिन आप क्यों मेरे चरण पकड़ रहे हैं, क्या ऐसी घटना घटी, आप मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है, मैं तो आपको पहचानती भी नहीं। तो उसने सारी बात बताई कि देखो कैसे मैंने आपको मारा था। तो उसने अच्छा अच्छा, तो कहते अब मेरी लेकिन लाइफ चेंज हो गई है, उस जो आपने कृष्णा बुक दी ना उसको पढ़ के मैं बिल्कुल परिवर्तन हो गया मेरा, अब मैं इस संस्था में जाना चाहता हूँ। तब उसने लड़की ने बताया कि ये संस्था है। तब उसने उस संस्था में ज्वाइन किया, और क्योंकि वो अकाउंटेंट था तो वहां उसने जो है उसको इस्तीफा दे दिया और मंदिर में अकाउंटेंट बन गया और उसने फुल टाइम मंदिर ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके से ऐसे बहुत से हजारों हजार ऐसी घटनाएं हैं जो कि ये गीता और शिल्प कुमार जी की बुक्स हैं, वो भक्त बनाया है। तो यही है, और शिल्प कुमार जी बता रहे हैं अपने ग्रंथों में इनका महत्व बता रहे हैं। देखिए भगवान सबसे पहले हैं, कह रहे हैं गीता में, तेषां सतत सुक्तानां भजतां पूर्ति भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां मुक्यन्ति इति। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। कौन? जो प्रेम से सेवा करते रहते हैं भगवान की। तो आप सबको अवसर दिया जाता है कि आप सब इस कार्य में लगें, भगवान की सेवा में लगें। कोई भी कितनी भी पुस्तक बांटता है तो उसका बहुत बेनिफिट होगा आपको अगर आप ये पुस्तक जो है जनता तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि आज जनता देख रहे हैं कि क्या क्या किस किस तरीके से लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, क्या ग्रंथ या उपन्यास पढ़ते हैं। आप देखते हैं ना, हम लोग जाते हैं ट्रेन में ले देते हैं लोग फालतू के उपन्यास जो कि कोरी कल्पना कहानी है उसको पढ़ रहे हैं। तो शिल्प कुमार ने बोला कि इन सारी फालतू के साहित्य को हम अपने आध्यात्मिक साहित्य में परिवर्तन कर देंगे। हमारे भक्तों को इतने उत्साह से पुस्तक वितरण करना चाहिए कि सब लोग गीता भागवत पढ़े, भगवान के ग्रंथ पढ़े। ये फालतू के अखबार उखबार में रोज वही केस, चार प्रकार के जो नियम होते हैं, नशा, जुआ, मांसाहार, व्यभिचार, इनकी सबकी चर्चा आप अखबार में देखोगे। लोग यही पढ़ रहे हैं कि आज कहां व्यभिचार हो गया, कैसे कैसे जो है रेप हो गया, ये हो गया, बस यही चार की चर्चा। और स्पोर्ट्स भरा हुआ है, स्पोर्ट्स। वास्तव में सिर्फ बगाई बोल रहे हैं कि देखिए कितनी मूर्खता है, एक सोटी है ना, और एक लेदर है, उस सोटी से उस लेदर को मारना है। अगर वो लेदर बाहर चला गया बाउंड्री के तो ये खुश हो रहे हैं, अरे आवाज से हरी बोल, नहीं हरी बोल तो नहीं बोलते बहुत खुश होते हैं, अरे वाह, पूरा उल्टा सीधा भेस बना के जाते हैं, वहां पर नाचते हैं। तो कितनी मूर्खता है केवल लकड़ी का टुकड़ा, उसने कोई कला, उसके अंदर कला है कि उसको ऐसी कला है कि वो उस लेदर को उस लकड़ी से घुमा सकता है ना, फॉलो कर सकता है इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है ये जरा, लेकिन लोग उससे बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उससे अपने आप को बड़ा स्टैंड मानते हैं कि हम क्रिकेट देख के आए हैं आज है, और क्रिकेट चर्चा करते हैं और इतनी टेंशन रहते हैं, अरे क्या जरूरत थी एक रन लेने की, देखना रन आउट हो गया। हमारे मार्केट में ऐसे एक व्यक्ति आता था, वो पागल हो जाता था, बिल्कुल ऐसे बातें करता था, आप देखो यार आज वो कितने अच्छे रन मारे उसने, और इसको क्या जरूरत थी ऐसा रन लेने की, पागल की तरह बातें करता, ऐसे क्या हो रहा है, इतना पागल क्यों हो गया भाई, कोई खेल रहा है किसको प्राइज मिलेगा, कोई नहीं, ये खाली बड़ी बात परेशान हो रहा है अपने, और कह लो तो आत्महत्या कर लेते हैं, उनसे इतना हजम नहीं होता वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो कितनी मूर्खता है, कैसे मूर्ख बनना है। एक बार शिल प्रभा जी जा रहे थे एक जगह गार्डन है, तो उन्होंने क्योंकि शिल प्रभा जी मॉर्निंग वॉक करते थे, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो वो गोल्फ खेल रहा था, गोल्फ खेल रहा था, तो शिल प्रभा जी उसको देख के रोने लग गए, शिल प्रभा जी आंखों से धड़ धड़ आंसू बह रहे, तो उसने डिसाइपल देख रहे, अरे प्रभा जी आंखों क्या हो गया अचानक, आप क्यों रो रहे हैं। तो शिल प्रभा जी ने बोला कि ये देखो व्यक्ति, अभी सुबह का समय है, मंगल आरती का समय है, जप का समय है ना, और ये व्यक्ति देखो क्या कर रहा है, इसका बिल्कुल अंत समय आ गया है, मृत्यु बिल्कुल नजदीक आ गई है, और ये क्या कर रहा है, एक स्टिक से एक बॉल को छेद में डालने की कोशिश कर रहा है, अगर वो बॉल छेद में चली गई तो इतना खुश हो जाएगा, अरे बहुत बड़ा उसने जैसे भगवत धाम चला गया हो कुछ भी। तो बहुत क्या है, कितनी मूर्खता है तो सर इतना ही कि वो बॉल जो है छेद में डालनी है, इतना ही तो है, लेकिन वो कर रहा है, उसको देख के सिर्फ वाजी करुणा से रो पड़े। तो सोचिए यही करुणा हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि ये सारे जीव इसी तरीके से भटक रहे हैं और मूर्ख बन रहे हैं, माया द्वारा ठगे जा रहे हैं, तो अगर हम लोग भी ऐसे बस बैठे रहेंगे, बस रजाइयों में सोते रहेंगे, तो ये इन बद्धजीवों का उद्धार नहीं पाएगा। शिल्प बाबाजी चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, जा रहे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हो तारो ए देश, मेरी आज्ञा है कि तुम सब गुरु बनो। यहाँ इसको संस्था में एक ऐसा नहीं है कि एक गुरु बना हुआ है, एक ही गुरु है, वो जो कह रहा है वही सुन लो, दूसरा कुछ नहीं, आप जो है प्रश्न भी नहीं कर सकते। जैसे एक बार राधा स्वामी में जब संस्था में था, तो मैंने उनसे बोला कि मैंने हाथ उठाया था जब गुरु जी ने प्रवचन दिया, तो बोला तुम हाथ क्यों उठा रहे हो, मैंने बोला कुछ प्रश्न करना है, गुरु से प्रश्न कर रहे हो, इसका मतलब गुरु के शब्दों में विश्वास नहीं है तुम्हें, चुपचाप हाथ नीचे करो। डर गया। तो इस तरीके से क्या नहीं किया, अगर आप अशिल को हम गीता में क्या कह रहे हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, अगर आपके अंदर संशय है तो आप जो है वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए संशय दूर होना चाहिए हमारे अंदर जो भी संशय है, इसलिए यहाँ पर अवसर दिया जाता है कि आप प्रश्न करो। और क्यों अवसर दिया जाता है, क्योंकि एक प्रमाणिक संस्था है, कैसे प्रमाणिक कह सकते हैं, हमारे शास्त्र जितने भी हैं वो प्रश्नोत्तर हैं, वो गीता में क्या कह रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं, और अगर आप देखेंगे पद्म पुराण में पार्वती पूछनी है, शिवजी बता रहे हैं, है ना, और फिर भागवतम में सुत गोस्वामी जो है बोल रहे हैं, और शरण आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, परिचित प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सुदेव गोस्वामी आंसर दे रहे हैं, जितने भी आप शास्त्र देख लीजिए सब हमारे प्रश्नोत्तर ही है। अगर प्रश्न ही हमारे दूर नहीं हुए, संशय रह गए, तो फिर आप भक्ति में नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए ये संसार जो है इसी तरीके से सारा भटक रहा है, और हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि अब हम लोग बाहर निकले, क्योंकि सर्दी का मौसम है इस समय, दिसंबर जनवरी बहुत सर्दी का मौसम होगा, रजाइयों से बड़ा प्रेम होता है, गद्दा और रजाई भी नहीं चाहते कि आप बाहर निकलो, वो भी आपको लपेटे रहते हैं और हम भी नहीं चाहते हैं, तो ठीक है संयोग मिल गया दोनों का। लेकिन जो है, लेकिन जो शिल प्रभा जी के डिसाइपल्स है वो फिर भी सेवा करते थे, वो लोग सुबह सादे निकलते थे और रात को, एक बार रामेश्वर स्वामी बता रहे थे कि एक बार वो आए थे रात को 12 बजे, उन्होंने बोला कि मैं देखो दिखा दूंगा शिल प्रभा जी को कि सबसे लेट मैं आया और सबसे ज्यादा पत्थर उतरण किया। जब वो मंदिर में एंटर किए तो तो एक भी व्यक्ति नहीं आया, सर्व पहले व्यक्ति वही थे। तो हैरान हो गए, बाप रे बाप, 12 बजे तक कोई आया नहीं है। तो सुबह वो लोग दो दो तीन तीन बजे तक प्रचार करते रहते थे। शुरू शुरू में हमें भी बड़ा जोश था। अब वो तो मैराथन है, हम तो रोज ऐसे करते थे, रोज जाते थे, सुबह सर प्रसाद लेते थे, फिर निकल जाते थे मंदिर से, शाम का प्रसाद भी नहीं लेते थे, एक ही दिन प्रसाद लेते, और फिर कहीं भी कहीं पानी वानी पी लिया, कुछ ले लिया, कुछ खाते नहीं थे, बाहर का तो कुछ खाते नहीं थे, बस सिर्फ पानी पी के मजाया करते थे। फिर एक एक बजे तक आते थे, अगर मिनिमम भी बैठता तो 11 बजते थे, 11 बजे तक सेवा करते थे। फिर अगर किसी ने प्रसाद रख दिया तो ठीक है, नहीं रख दिया तो ठीक है, अपना पानी नहीं पी के सो जाते थे। तो इसी तरीके से और लोग कई कई हमारे कुछ नए भक्त, कुछ भक्त थे पुराने, वो कहते थे ये नया भक्त आया है, इसको बहुत अहंकार है, हम लोगों से बात नहीं करता। तो फिर हमारे मोहन बाबू जी ने पूछा, क्या आप यहाँ भक्तों से बात नहीं करते? मैंने बोला ऐसी बात तो नहीं है प्रभु जी, मैं तो सुबह साधना करने के बाद मैं निकल जाता हूँ, उसके बाद मैं जब वापस आता हूँ सब सोते होते, मेरे को बात करने का समय नहीं मिलता है किसी से। तो फिर उन्होंने उनको बताया कि ऐसी बात है, तो वो रहता नहीं मंदिर में, बाहर ही ज्यादा रहता, इसलिए आप लोगों से मिल नहीं पाता है, आप लोग क्षमा करना, कोई अहंकार वाली बात नहीं है। तो उनकी समझ में आई। तो इस तरीके से जो जीवन को समर्पित करते हैं भगवान की सेवा में, तो उन्हीं का जीवन सफल है। आप लोगों ने जैसे एक बार गाना भी सुना, भजन सुनते हैं, मैं इसको भजन भी बोलते हैं, बात लोग, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो अगर दूसरों का दुखड़ा देखोगे कि लोग कैसे जो है भटक रहे हैं, तो करुणा आनी चाहिए हमें ऐसे लोगों पर। अगर वो ग्रंथ खरीद लेते हैं तो सोचिए कितना जो है, कितने जन्म जो उनके होने वाले हैं आगे, उस जन्मों से बच जाएंगे वो। उस जन्म में हो सकता है वो कोई नाली का कीड़ा बन रहा हो, कोई बहुत गंदे गंदे पाप होते हैं लोगों के, बहुत गंदे गंदे पाप होते हैं, तो हो सकता है वो क्या बनने वाला हो, लेकिन अगर आपने उसको ग्रंथ दे दिया तो बच जाएगा वो, चाहे उसका नाम ही पड़ेगा। चलो आप बोले कि मैं पुस्तक वितरण नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कैसे जाऊँ? ठीक है, अगर आप पुस्तक वितरण नहीं करने आते, आप उसको ले जाओ सिर्फ। अगर आपने एक दिन में एक भी किताब बांट दी तो कितनी किताब बढ़ जाएंगी? महीने में 30 किताब बांट दी। और हमारे महाराज क्या बोलते हैं, एक गीता लगभग 2-3 लोग पढ़ते हैं, तो यानी कि आपने 60 या 90 लोगों का उद्धार कर दिया आपने, एक गीता अगर आपने बांट दी। चलो आप बोल रहे कि हमसे एक भी गीता नहीं बढ़ती है, हम बांट नहीं पाते हैं, तो इसका भी उपाय श्रील प्रभा जी बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आप पुस्तक उद्धार नहीं कर सकते तो आप सिर्फ पुस्तक ले जाओ, लोगों को दिखा दो, इसको देखने से भी उसका उद्धार हो जाएगा। हाँ, सो देखेगा, जो छुएगा, एक लैंप पड़ेगा, श्रील प्रभा जी कि उसका भी उद्धार होगा, ये एक ऐसा प्रमाणीकरण है। तो इतना तो कर सकते हैं हम सब लेके चले जाए, लोगों को दिखा दें, लोगों को टच कर दें। मुसलमान भी कई होते हैं तो हम उनको बोलते हैं भैया सुनो, लोगे की अरे मुझे पता ही नहीं लगा, अरे अरे नहीं चाहिए, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, राम राम जी, चलो जाओ, ठीक है, सलाम बोल दे, जो भी बोल दो उसका, ठीक है जाओ। लेकिन वो नहीं लगा, ज्यादातर मुसलमान बहुत कम ही ऐसे होते चले लेते हैं, लेकिन उसने टच कर दिया तो कई जन्मों से उसको पता नहीं कि कितने पाप उसके नष्ट हो गए। तो इतना ही करो कि आप सब इतना करो, और अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, आप पवित्र हो जाओगे, चाहे वो पवित्र ना हो, चाहे वो ना लेकर, लेकिन आप पवित्र हो जाओगे। जैसे होता है ना कि अगर किसी को पत्थर मारते हैं तो सामने वाला पत्थर मारेगा, मारते ना, अगर हम किसी को पत्थर मारते हैं तो भी पत्थर मारेगा। जैसे हम गांव में थे तो मुसलमानों से हिंदुओं की लड़ाई हो गई थी, तो हमने भी पत्थर मारे थे खूब मुसलमानों को, तो मुसलमान भी, उनकी संख्या कम थी, तो वो जल्दी जल्दी छत पे चढ़ गए, छत से मारने लगे, हम लोग मारते रहे, बहुत हमारी तरफ भी लोग घायल हुए थे कईयों को लगा, लेकिन लड़ते रहे हम लोग। तो इस तरीके से वो हम पत्थर मार रहे तो वो भी पत्थर मार रहे, तो अगर हम कृष्ण देंगे तो कृष्ण हमें मिल जाएंगे। हाँ, हम किसी को कृष्ण दे रहे हैं तो कृष्ण हमें मिल जाएंगे, चाहे वो उसको ना ले, लेकिन हमें तो मिलेंगे, हम तो बेनिफिट होंगे। तो इससे क्या है, यहीं पे यही बता रहे हैं, यहाँ पर श्री प्रभा जी बता रहे हैं, मैं क्या से मेरा प्रवचन ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है ना, अगर कहीं पे रुकना हो तो बता देना, उसके आप आधे घंटे बाद रोक लेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं, जो लोग संसार भर में कृष्ण भावना का प्रचार करने में लगे हुए हैं, उनका मोक्ष तो सभी परिस्थितियों में ध्रुव है, पक्का होगा उसका, ये बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि उनका मोक्ष पक्का होगा। और ये भगवान लीला पुरुषोत्तम जो हमारी किताब है उसमें लिखा हुआ है। और सुनेंगे आप, चलिए और सुनिए। अब क्या होगा बता रहे हैं कि कई बार हम लोग प्रचार करने निकलते हैं तो हो सकता है सब आपका सम्मान नहीं करेंगे। आप ये मत समझिए कि सब लोग कहेंगे अरे बड़ा अच्छा, आप तो कितना अच्छा कर रहे हो, गीता बांट रहे हो, लो माला पहनो, सब ऐसा नहीं करेंगे। कई लोग करेंगे कि हिंदुस्तान में ऐसी खासियत है कि हिंदुस्तान में लोग इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग जरूर मिलेंगे आपको जो कहेंगे अरे क्या कर रहे हो तुम, जवान हो, पढ़े लिखे हो, ये क्या फालतू काम कर रहे हो यार, कुछ काम करो यार, ये क्या फालतू लगे हुए हो, किसी संस्था में भड़का दिया बस, अभी मधुसुंदर दास जी थे उन्होंने बोल दिया होगा कुछ भी। तो इस तरीके से लोग ऐसे कई बात बोलेंगे ये, और ये हमेशा होता है, सब जगह होता है। जैसे हम लोग बच्चे थे है ना, हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो किसी भी मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, कोई ना कोई आंटी जरूर आती नहीं कि तुम लोग शर्म नहीं आती है, हमारा शीशा बुड़ जाएगा, कहीं ना कुछ जरूर मिल जाता है ऐसा। आप कहीं भी खेल लो, कुछ भी कर लो, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो आपको विरोध करेगा, आप बाहर निकले नहीं विरोध करना शुरू। यहां तक कि शिला प्रभात जी को लोगों ने नहीं छोड़ा, शिला प्रभात जी के लोगों ने कितना निंदा की, कई लोगों ने निंदा की। अभी भी आप जाएंगे बंगाल में तो अभी भी लोग, कई लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, उन्होंने पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया, उनका कोई स्वार्थ नहीं, अपना जीवन सौंप दिया उन्होंने, सब कुछ पब्लिक के लिए किया, अपनी बीमारियां ले लेके भी वो प्रचार करते रहे, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं कि वो बेकार व्यक्ति था, वो ऐसा था, वो गालियां देते हैं अभी भी। अच्छा लो सिर्फ प्रभात जी को छोड़ दो, कृष्ण को भी गाली देते हैं लोग कि देखो वो कैसा था, कई कई जो है स्त्रियों के साथ डांस करता था ये। जब भगवान को नहीं छोड़ा, सिर्फ प्रभात जी को नहीं छोड़ा, तो हम किस खेत, मुरी तो नहीं बोले, मुरी तो स्त्री हो गई तो हम किस खेत की गाजर है, गाजर भी स्त्री हो गई। वैसे तो देखा जाए तो हम सब प्रकृति हैं, तो है आलू नहीं, आलू नहीं बोलना जो भी है, तो आप लोग समझ गए ना सब। तो इस तरीके से हमको जो है कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि कुछ प्रॉब्लम समस्या आएंगी आएंगी, इसलिए श्री बाबा जी बोलते हैं हम कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार की मुसीबतें उठाते हैं। देखिए अतः आप सुनिएगा, जो लोग मुसीबत उठाते हैं कृष्ण सेवा में उसके लिए सुनिएगा, ये सुनिश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। हरि ओम। ये भगवद गीता के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के तात्पर्य में आप पढ़ लीजिएगा, इस श्लोक बारे बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है जरूर धाम में जाएगा। यहां तक कि श्लोक बाबा ने यह भी बोला है कि मैं गारंटी देता हूं जो भी इस पुस्तकों को वितरण करेगा उसको मैं धाम में लेके जाऊंगा। तो कितना सरल तरीका है। हो सकता है हमारे तो वैसे संस्था में ऐसा होता है कि सबको अवसर दिया जाता है कि वो प्रवचन करें, लेकिन कई लोग जो है प्रवचन नहीं कर पाते हैं, कई लोग कीर्तन नहीं कर पाते हैं, कई लोग लेक्चर नहीं दे पाते हैं, कई लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि ये ग्रंथ को लेके बाहर निकल जाए, ये तो हर आदमी कर सकता है। तो इसमें जब उधार हो रहा है तो हम क्यों ना कर रहे हैं, जब हमारी सारी परंपरा इससे प्रसन्न हो रही है, सारे यहां तक भक्ति सिद्धांत महाराज भी बहुत प्रसन्न होते थे, कोई एक ग्रंथ बाहर जाता था तो बहुत प्रसन्न होते थे, भक्ति सिद्धांत महाराज उसको आशीर्वाद देते थे जो प्रपात जी के गुरु हैं, प्रपात जी भी बहुत प्रसन्न होते थे जब उनके शिष्य जो है पुस्तक बाहर जाते थे, उनको बहुत प्रसन्न होते थे और इस तरीके से ऐसे आशीर्वाद देते थे। सेम हमारे महाराज भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई पुस्तक वितरण करके आता है, तो वापस आता है तो उसके सर पे समसाज जैसे करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं महाराज। तो ये परंपरा पूरी देखिए आप, पूरी परंपरा से प्रसन्न हो रही है। चलिए आइए, यहां तक कि नरोत्तम दास ठाकुर ने भी तक बोला है कि हम लोग जो है पुस्तक हाथ से लिख रहे हैं और बांट रहे हैं, इसमें हमें बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कम पुस्तकें हमारी बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसा अभी क्या हुआ कि आगे चल के ये कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी आएंगी जिसके द्वारा जो है जल्दी जल्दी जो है पुस्तकें जो है छपेंगी, और एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो इन पुस्तकों को पूरे संसार में बांटेगा। 500 साल पहले नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, और वो कौन थे, श्रीला प्रभुपाद जी। श्रीला प्रभुपाद जी ने किया, पूरे वर्ल्ड में जो है इन पुस्तकों को बांटा, तो वही जो है हमें मौका दिया जा रहा है। तो यहां बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तगण चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार सारे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। उन्हें अनेक कर्मियों से मिलना पड़ता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के पास से वे भौतिक प्रभावों से अछूते रहते हैं। तो यानी कि जो 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 है भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो बहुत ही जो संदूषण होता है उससे वो मुक्त हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि आप जब बाहर निकल रहे हो तो आप ये भेष बना के निकल रहे हो, तो लोग आपसे ये उम्मीद करेंगे कि ये भक्त है, और ये कोई चर्चा करेगा तो भक्ति भी करेगा। और मजबूरन, चाहे आपके अंदर भक्ति बिल्कुल नहीं है, आप जीरो हैं भक्ति में, लेकिन आपको मजबूरन करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लोग ये उम्मीद रख रहे हैं आपसे कि आप भक्त हो, आप भक्ति के बारे में बोलोगे, तो आपको बोलना पड़ेगा ये गीता है, ये गीता है, ये गीता दीजिए, बाबा गीता 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 कितने बार बोल दिया आपने, ये कृष्ण है, ये प्रभुपाद जी है, ये कितने, अगर आप ना भी चाहते हो आपने कई बार बोल दिया, तो वो इससे क्या है, आप पवित्र हो जाओगे। ऐसा निष्ठावान भक्त जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विश्व भर में प्रचार करते हुए उनकी सेवा में लगा रहता है, वह विश्व तरंग या भौतिक प्रभाव से कभी प्रभावित नहीं होता, उल्टे समय आने पर वह श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण में लौट जाएगा और उनके साथ शाश्वत संगति प्राप्त करेगा, यानी कि चैतन्य महाप्रभु के धाम में वापस जाएगा जहां चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। और यहां तो किसी उपाय ने बोला है कि चैतन्य महापुरुष स्वयं आएंगे, जो पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, चेतन महापू उनके शरीर छोड़ने के बाद चेतन महापू स्वयं आएंगे और उसे हाथ पकड़ लेके जाएंगे। अब इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, स्वयं भगवान आपके पास आएंगे। तो ये जो है पुस्तक उतरण का महत्व है। तो हमारे पास अब हम थोड़ा आपको आइडिया बता देते हैं, और कई बार बता देते हैं कि हमारे अंदर उत्साह भी बहुत डाउन हो जाता है, जब कोई किताब नहीं लेता है तो उत्साह बहुत डाउन हो जाता है। अभी परसों हम लोग जो है क्या है? अच्छा, तो आप थोड़ा सा बता देते हैं कि हम लोग क्या है कि अगर उत्साह अगर आपका डाउन हो रहा हो, क्योंकि कई बार पुस्तक लोग नहीं लेते हैं, फिर भी जो है आप धैर्य रखिए। कल हम लोग परसों हम लोग जो है राजपुरा गए थे, राजपुरा पंजाब में पड़ता है, तो पंजाब हम लोग गए, तो वहां पे एक नया व्यक्ति है, अभी कौन से जुड़ा है, तो उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है। उन्होंने बोला कि प्रभु जी आप यहाँ पे आओ, यहाँ हरे कृष्णा की यात्रा निकल रही है। तो हमने बोला अच्छी बात है, हम लोग वहां पे गए, राजपुरा यहाँ से 200 कुछ किलोमीटर है, वहां गए। तो वहां जो है जब गए तो मालूम पड़ा वो इस्कॉन की यात्रा नहीं, किसी और संस्था की यात्रा। तो मैंने उसे बुलाया, मैंने बहुत डांटा, मैंने बोला कि यार तू की कर रहा, तू इन्हें पैसे तो दबा कर देते यार। वो कह रहे यार, कह रहा प्रभु जी मनो तो पता नहीं है, हरे कृष्णा वाली तो है यात्रा, हरे कृष्णा सारे हरे कृष्णा एक जड़े थोड़ी होने, से पता नहीं था। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है जो भी है। तो लेकिन हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे वहां पर, बिल्कुल पुस्त नहीं जा रही थी, सब लोग पहचान हमारे भक्त लोग। फिर उन्होंने बोला प्रभु जी आप आओ बाहर, आप शुरू करो तो कुछ स्टार्टिंग हम लोग को थोड़ा सा आएगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बड़े शान से गया, चलो अभी दिखाते हैं कैसे होता है, और किया तो एक भी नहीं गई। मैंने बोला अभी इतना मेरा मूड नहीं है, वापस जा रहा है, तो सच बात है। तो मैं वापस जा रहा, मैंने बड़ी गुस्सा आ रही है, मैंने बोला देखो यार उसने मरवा दिया, कोई पुस्तक नहीं जा रही यहाँ पे, और हम लोग 5,000 रुपए खर्च करके डीजल का यहाँ आ गए हैं, अब कैसे करें, सब परेशान बैठे हुए थे। तभी हमारे भक्त महाप्रभु वो आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि प्रभु जी अगर हमें कृष्ण ने यहाँ भेजा है और हम लोग धोखे से आए हैं तो जरूर कृष्ण की ऐसी कुछ इच्छा होगी, हम लोग जो है दोबारा जाते हैं उस साथ से फिर पुस्तक वितरण कर देते हैं, हो सकता है अब हो जाए। मान लो 100 गीता भी अगर हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, 100 तो हो जाएंगी ना, करो स्टार्ट करते हैं। तो मैं गया, मैंने बोला ठीक है। फिर वहां के जो गुरु जी थे, मैंने बोला गुरु जी महाराज जी क्षमा कीजिएगा, हम लोग यहाँ धोखे से आ गए हैं, तो हम लोग यहाँ पुस्तक वितरण करना चाहते हैं। महाराज ने बोला हाँ करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो करो। तो हमने प्रारंभ किया और फिर हमारे सब भक्तों ने बहुत उत्साह से पुस्तक वितरण किया और धीरे धीरे जो है पुस्तक वितरण आरंभ हो गया। और शाम को हमने सबसे पूछा कि हाँ भाई कितना हुआ, सारा मिलाया तो 550 गीता हुई। तो अगर आप उत्साह रखेंगे, आप करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो कृष्ण तो देखेंगे ना, हाँ भाई कृष्ण की भक्त जो है मेरे लिए मेहनत कर रहा है, मेरे तो काम कर रहा है, ये अपना काम थोड़ी कर रहा है, तो कृष्ण तो कराएंगे काम। तो कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय हमें अभी गवाह नहीं दे रहा है, तो आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। अरे मैं अभी इतना क्राउड मैं देख रहा हूँ, कुछ नए लोग हैं, तो हम जो चर्चा करते हैं वो यहाँ पे अभी कुछ जम नहीं। तो कुछ प्रश्न कर सकते हैं आप लोग, जैसे आप लोग से कई लोग पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो कई लोग बहाने बनाते हैं कि ना लेने के या कुछ, तो उसमें से एक आध प्रश्न कर सकते हैं आप। आए तो भाई एक दो प्रश्न लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को सेवा का बताया जाएगा।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण
प्रभु जी, जब हम गीता बांटने जाएं तो हम क्या बोलना चाहिए, और अगर कोई उसमें पूछे कि ये प्राइस इसकी है तो MRP क्या है, और जैसे क्योंकि हम बोलेंगे कि 110 की है तो उनको ये ना लगे हम उनसे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो ये कैसे उन्हें आश्वासन दे सकते हैं?
हाँ, हम लोग ज्यादातर ये बोलते हैं, सबसे पहले तो हम लोग किताब देते हैं, हम सब बहुत कम शब्द बोलते हैं। अगर आप बोलेंगे आप ये गीता ले लो है, इसमें इसमें क्या है, इसमें है कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। अच्छा भैया, पहली बात में पहली बार मिला है और हमारी शरीर आत्मा अलग कर रहा है, तो ऐसा नहीं लेगा आप सब। उससे सामने जो जो व्यक्ति कुछ भी बोलता है ना, हम उसके फायदे की बात बोलते हैं, तो उससे व्यक्ति अफेक्ट हो जाता है। जो वो भी बोल रहा है, चाहे वो बिल्कुल बकवास कर रहा है, तो उसी का जैसे हम अभी परसों नहीं कुछ दिन पहले हफ्ते बाद पहले लगा, ये व्यक्ति आया शराब पिया हुआ था बहुत, तो मैंने गाड़ी रोकी, मैंने बोला रोकिए ये आपके लिए गीता है। भैया तोड़ा तोड़ा तोड़ा, मैंने क्या बहुत पी रखी है। अच्छा, कहते हाँ मैं बहुत नशे में हूँ। मैंने बोला अच्छा यार देखो आप भी नशे में हो, हम भी नशे में हैं, तो तुमने आपको कौन सा नशा कर दिया? मैंने बोला देखो आपको दारू का नशा है, हमें भक्ति का नशा है, आपने जो है देखिए, और हमारा नशा ऐसा है जो चढ़ता ही जाता है, और आपका नशा तो शाम सुबह उतर जाएगा है। हम लोग देखो हम लोग भी सब नशे हैं, कैसे इसीलिए तो देखो हमारे जो है हम लोग काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ छोड़ के हम लोग यहाँ पर रोड पे सेवा कर रहे हैं, तो कितना बड़ा नशा है। अरे यार तू भी नशा करता है? मैंने हाँ यार पिया हुआ था, उसे पता ही नहीं कौन सा नशा है। कहना यार फिर मैं क्या करा, मैं साथ ले लो एक था। कहता अच्छा ठीक है यार दे दे यार तो अगर आदमी के जिनको अनुरूप ही बात करते हैं ना, तो उसको स्वीकार कर लेता है। जैसे आप बोल रहे हैं नशा करता है तो यार दारू छोड़ दे, पहली बार में क्यों दारू छोड़े तो पहले उसको धीरे धीरे समझाओ। अगर आपने उसे दे दिया ग्रंथ ग्रंथ दे दिया तो बाकी का काम प्रभा जी करेंगे, है ना। एक बार आपसे घर में ग्रंथ बजा दिया, एक बार वो पढ़ लेगा तो उसे मालूम पड़ जाएगा। जैसे हमारे भक्त हैं तो बता रहे थे कि हमने देखा कि कुछ लोग जो है वो ग्रंथ बांट रहे थे, तो मैंने बोला कि रशिया का रशिया रशियन था, तो रशियन बोला कि अरे ये क्या है, तो उसने बोला कि ये क्या चीज है, ये मैंने पहली बार ऐसी किताब देखी है, ये क्या लिखा हुआ है भगवत गीता ये क्या है। तो उसने बोला कि ये किताब है इसको आप ले लो, तो उसने बोला कि इसमें क्या योजना है, उसने बोला कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। कहता मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये तो मैं पहली बार सुना है। कहता हाँ तो तुम क्या हो? कहता मैं भी आत्मा हूं। अच्छा तो तुम्हारी उम्र कितनी है? कहता शाश्वत इटर्नल। कहता यार कमाल है यार, ये सारे शब्द मैं पहली बार सुना हूं, यार तुम क्या कह रहे हो? तो उन्होंने बोला हाँ मेरे शरीर की उम्र 19 साल है, हमारी आत्मा शाश्वत है। अच्छा ठीक है। उन्होंने बोला कि अच्छा ये कितने की है? तुमने बताया इतने की है। तुमने बोला यार कह रहा कि ये मुझे सारे शब्द बिल्कुल नए नए लग रहे हैं और मेरे को जान लग रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला तुम ये किताब ले लो, ऐसे कई शब्द तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हारी क्लियर हो जाएगी फिलोसफी। अच्छा चलो ले लेता हूँ। उसने किताब खरीदी, ठीक है खरीद लो, उन्हें खरीदी किताब, और वो कह रहा है कि फिर उसने पढ़ना शुरू की तो उसे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। सुना अरे बहुत सी किताब है यार। तो तीन दिन बाद बता रहा है, वो 3 दिन बाद वो बहुत प्रभावित हो गया इस किताब से, बहुत प्रभावित हो गया। और फिर उन्होंने बाहर निकला तो एक बार उन्होंने देखा कि एक कैफे था, वहां पे फिर लोग ग्रंथ बांट रहे थे, तो वहां पे गया, कहता कि अरे अच्छा अच्छा मैंने आपकी गीता पढ़ी है, बड़ा अच्छा हुआ है। तो उसने थोड़ा प्रचार किया, तो उन्होंने बोला कहाँ पे आपका संस्था है? तो उन्होंने बताया इस्कॉन यहाँ पास में। तो बताया एक हफ्ते बाद उसने नशा जुआ मसाहा व्यभिचार सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ एक हफ्ते में। फिर उसने जो है उसने संस्था ज्वाइन कर दी और फुल टाइम डिवोटी बन गया, एक हफ्ते में तरफ वो फुल टाइम डिवोटी बन गया। हाँ, और आज वो व्यक्ति मेरे साथ पुस्तक वितरण कर रहा है, वो है रशियन डिवोटी, आप अगर जानते होंगे रशियन डिवोटी वाणीनाथ प्रभु, वो आज मेरे साथ पुस्तक वितरण कर रहा है। तो उन्होंने अपनी लाइफ बताया। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से ये जो है व्यक्ति ने अपने आप छोड़ दिया नशा जो हमारे साथ। अगर आप उसको दे दोगे तो तो इसलिए जैसे अगर आप उसके अनुरूप बात करें, जो भी व्यक्ति कुछ बोल रहा है उसके अनुरूप बात करें, उसको प्रसन्न कर दें, तो व्यक्ति आराम से ले लेते हैं। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं, हम जाते हैं कहते हैं कि अरे अभी हम कुछ नहीं देंगे, हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे घर में लोग बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला डॉक्टर देगा दवाएं और हम देंगे दुआएं, है ना। एक बार दुआएं दवाएं से ज्यादा काम करती हैं। और वो ऐसी स्थिति होती है, आदमी सोचता है यार किसी तरीके से हमारा मरीज ठीक हो जाए, यार चलो अच्छा ठीक है यार दे दो यार। कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, और वास्तव में भगवान सही करेंगे, भगवान ही बोल रहे हैं, भगवान सही कर देंगे उसके मरीज को। तो उसके अनुरूप बात करोगे आप। हम लोग स्टार्टिंग ये करते हैं, हरे कृष्णा हम लोग स्वर्ण टेम्पल से हैं, ये आपके लिए कुछ नहीं बोलते, ये आपके लिए। तो एक बार हमने गीता पढ़ लेता तो सोचा जाता है अरे यार इसने मुझे गीता भी दे दी, हाँ कैसे क्या करें, बस आप आज सब भक्त लोग आए हैं प्रचार कर रहे हैं, सब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सबको हम गीता दे रहे हैं क्योंकि गीता नीति का महीना चल रहा है और आपकी छोटी सी मंदिर की सेवा है, सर 110 रुपए का दान करना है, बस इतना ही शब्द बोलते हैं, इसे ज्यादा शब्द नहीं बोलते हैं। उसी शब्द में फिर वो अगर कोई प्रश्न करता है तो उसके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, बस हम ज्यादा फिलोसफी नहीं बोलते हैं, फिर गीता लेता क्यों। अगर आप पूरी फिलोसफी बोलेंगे तो और प्रश्न करेगा और प्रश्न करेगा। मान लीजिए आप कीर्तन के साथ जा रहे हैं, कीर्तन 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 चला गया, आप और दूर चला गया, आप 15 मिनट तक उसे जख मार रहे हैं, बाद 15 मिनट बाद बोला कि एक्चुअली गीता नहीं चाहिए मुझे, अब तेरी मैं 15 मिनट की बात कर रहा था, कई बार ऐसा हो जाता, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, आधे आधे घंटे हमारे भक्त बहुत बात करते रहते हैं उससे, और मालूम पड़ा आधा घंटा कीर्तन तो चला गया बहुत दूर, अब ये बेचारा उसने गीता भी नहीं दी, आधा घंटा उसने बर्बाद कर दिया, आधा घंटा कीर्तन पकड़ने के लिए भाग रहा है, एक घंटा गया और एक गीता ही नहीं गई थी। इसलिए बहुत कम शब्दों में ज्यादा बात, कम शब्द बोलिए, हम लोग कौन से आए हैं, आज ये गीता जयंती का महीना चल रहा है, सबको गीता दे रहे हैं और सब भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आप भी थोड़ी सी सेवा करिए, मंदिर के लिए 110 रुपए का दान करिए, बस इतना शब्द। उसने कोई ले ना ले, ऐसा है कि 90% लोग ऐसे होंगे जो नहीं लेंगे, 10% लोगों ने अगर ले ली तो आप नंबर वन होंगे, 10% लोगों ने भी ले ली तो उसमें कोई मुसलमान भी होगा, ईसाई भी होगा, कुछ भी होगा, सिख तो ले लेते हैं, सरार लोग ले लेते हैं, पंजाबी ले लेते हैं, वो सब ले लेते हैं, खाली मुसलमान मेन नहीं लेता है, ईसाई भी कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ कट्टर ईसाई होते हैं वो नहीं लेते हैं, लेकिन खाली मुसलमान ऐसे हैं जो बहुत ही कम 0.1% मुसलमान होंगे जो ले लेंगे, उनके ऊपर ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, खाली दिखा देना, अगर ले तो ले नहीं जाओ, ये है कि फटाफट आगे बढ़ते रहो, बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना, ठीक है। और एक हाथ प्रश्न, एक प्रश्न और ले लेगा भाई, टाइम बहुत काफी बढ़ गया है, यहाँ से बीच में हम बोलते रहेंगे टाइम बढ़ गया और एक एक प्रश्न लेते रहेंगे।
हरे कृष्ण प्रभु जी, कभी कभी प्रभु हम लोग मार्केट में जाते हैं तो कोई सुनने नहीं चाहता है, मतलब हम सबको दिखा देते प्रभु, लोग हाथ चलाते आगे चले जाते हैं, मतलब कोई सुनने नहीं चाहता, कोई देखने नहीं चाहता, बोलते हमें हमारे पास बहुत गीता रखी, हमने बहुत गीता ले रखी है, हमारे पास बहुत सबके पास गीता, हम क्या करेंगे गीता बोलेंगे, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए।
ऐसा है कि देखो जो सुन रहा है उसी को सुनाओ, सबको जो नहीं सुना है जबरदस्ती सुन पकड़ो, कई बार बहुत जबरदस्ती लोग देते हैं तो उससे प्रभाव भी चलने पड़ता है, जो आपके पास सुन रहा है सब उसी को सुनाओ, अगर वो बोलता है कि हमारे पास है हमने दी तो हम सब इतना ही बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है आपने गीता दी, हम लोग हर साल ये गीता जयंती मनाते हैं, हर साल गीता देते हैं, हर साल हमारे लिए 100 रुपए अलग कर दूं, ऐसे हमारे कई बंदे भी ग्राहक हैं, हम जो है जैसे होशियारपुर में जाते हैं, होशियारपुर में एक व्यक्ति है तो एक बार वो बोला था हमारे पास गीता है, मैंने बोला सिर्फ हम आपको 5 गीता देंगे और आपको हर साल हम देंगे, है ना, हर साल हमारे 500 रुपए अलग कर देना, कहता ठीक है, और हम कभी भी जब भी आते हैं वो 500 रुपए टेबल पर लग देता है, कहता वो रखवा 500 रुपया। ऐसे पटियाला में भी है कई लोग हैं तो वो पहले से तैयार रहते हैं कि हाँ भैया वो व्यक्ति आएगा पैसे लेके जाएगा, क्योंकि आप ये बोल सकते हैं कि ये 100 रुपए क्या हो जाता है, मंदिर में जाएगा आपका थोड़ा दान जाएगा ये, और ये हर साल 100 रुपए दान कर देना। एक बार मैंने एक बार ऐसे ही बोला था, ये व्यक्ति बोला था भैया ये गीता हमारे पास है, मैंने बोला देखो अगर कोई भिखारी आता है और उससे अगर 1-1 रुपया आप डेली देते हैं तो हरे कृष्ण, अगर कोई भिखारी आता है और वो अगर आप उससे 1-1 रुपया डेली देते हैं तो साल के 365 रुपए बनते हैं, और हम आपसे साल के सिर्फ 100 रुपए मांग रहे हैं, 265 रुपए का डिस्काउंट। तो वो कहता है ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है आज पूरे हर साल ले लेता है गीता, पता हर साल ठीक है आप एक गीता लेके जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि बस 100 रुपए दान करना मंदिर के लिए, क्या होता है बस उसे लेकर हमारे बीच में है। इसके लिए हरिनारायण प्रभु, ये प्रभु जी बड़ी कृपा है, 10 साल से हमारे साथ सेवा कर रहे हैं। और हालांकि ये चैनल तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी इनकी इंग्लिश है, लेकिन ये बाहर थोड़ा सा काम करते हैं, जिनसे इनका अपना परिवार तो उन्होंने किया नहीं, पत्नी बच्चे कुछ नहीं, लेकिन अपना जो है गुजारा हो जाए इतना काम करते हैं, बाकी पूरे दिन मेरे साथ सेवा करते हैं। प्रभु जी हरिवाल आपका स्वागत है। तो 10 साल से प्रभु जी जो है मेरे साथ कंटिन्यू सेवा कर रहे हैं, चाहे इनको रात को 2 बजे बुला लो, चाहे रात को 2 बजे छोड़ो, कभी भी इन्होंने मना नहीं किया आज तक सेवा के लिए, इतनी सेवा करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। और भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी प्योरिटी आपकी सिक्योरिटी है।
अब ये
आप भक्तों को ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि कुछ भक्त भगवत का आप लोग प्रेरित ले सकते हैं कि हम लोग इतना इस पूरे महीने में हम लोग इतना पुस्तक बांटेंगे, और खुले दिल से आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बता सकते हैं, और प्रयास करेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो कुछ लोग जाने का तैयार है, जाइए मत।
प्रभु जी ने जैसा बताया कि किस किस तरह से भगवत गीता बांटी जाती है, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस महीने ज्यादा से ज्यादा गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर सकूं और साल के मुकाबले।
धन्यवाद भाई। तो कितनी ज्यादा बांटेंगे आप?
संख्या 50 रो में कंपल्सरी है।
अच्छा 50, हमारे सिर्फ उपाजी बोलते थे डबल, तो 100 कर देते हैं। हमारे सिर्फ उपाजी का स्लोगन था। हाँ ठीक है
जी,
तो आप चाहें तो
जय
कर सकते हैं।
जय भारद्वाज।
प्रभु जी 100 कर दीजिए, 100 कर देंगे प्रभु जी। और प्रभु जी
नवीन कुमार सिंह,
नवीन कृष्ण का नाम है, जो हमेशा नवीन रहते हैं, कभी ओल्ड नहीं होते हैं।
दो दो
200, वाह 200 कितना?
ओनली 2
हैं, 11 कितना कर देंगे, 11 कर दो, 11 बार देंगे। अगर पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त मित्र शत्रु किसी को भी दे सकते हैं आप। और बैठिए बैठिए, आप
मदन
परेशान नहीं करेंगे, आप बैठिए।
मदन कुमार लिखिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप बैठ जाइए, 10 मिनट के में क्लास ओवर हो जाएगा, उसके बाद सभी के लिए प्रसाद है।
हाँ।
तो प्रीजिंग करने के बाद
सबसे पहले प्रसाद सुनने होगा आप।
मदन कुमार प्रभु दास, मेरा नाम साहिल कपूर है, मैं 50 कम से कम करना चाहूंगा जी। 100 100 कर लेंगे।
मेरा नाम
राहुल कुमार है, और मैं लास्ट ईयर ही मैंने ली थी बुक्स, और वो भी मेरे पास अभी कुछ शेष भी बची हुई है, मैंने पहले उसकी पेमेंट कर दी थी, तो अभी मेरे पास तो एटलीस्ट मैं 10th तो मैं ले लूंगा, तो ऑलरेडी मेरे पास 20 बुक्स रखी हुई है, 20। अनिल कुमार,
अनिल कुमार
21। हरे कृष्ण। इनके मतलब नहीं, आपकी मम्मी
नहीं,
बच्चों से छोड़ दिया बाकी।
दिगंबर सिंह प्रभु 32।
अच्छा एक कार्टन आप 51 कर दो, 51 हो जाएगा आपका, 51 बड़ा अच्छा ठीक है।
अब चैतन्य दास 200 प्रभु।
हरे बोल चैतन्य दास 200। हरियाणा प्रभु तो 40,000 गीता टारगेट उनका,
बालकृष्ण मेरा नाम है, और करीब 32 करूंगा,
32 अभी 51 कर दीजिए भाई। बालकृष्ण तो प्रभु जी आप कृष्ण से
ये प्रभु जी 10 साल से सोना माल करते आ रहे हैं।
प्रभु जी फिर तो आपको ज्यादा करनी चाहिए, चलो 51 कर दो। 51 बराबर
कमल किशोर
ठीक है कमल किशोर हो गया देख दिया बहुत बढ़िया अब इंसिडेंट है आप दीक्षित बोलते हैं कमल कृष्ण नहीं नाम है आपका आप दोनों का नहीं है
गोपाल कृष्ण पाल सौ का जी
हरे कृष्णा जो भक्त लोग नए आए हैं या जो लोग पुराने जैसे कि जानते हैं लाइब्रेरी से आप भगवद गीता ले सकते हैं और लक्ष्मी भी आप लास्ट में जमा करें कोई दिक्कत नहीं बीच में अगर आपको हो जाता है तो आप जमा कर सकते हैं नहीं तो फिर आप लास्ट मोमेंट में जमा कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर वहां पर लिखवा के भगवद गीता ले सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए आपको उस लैंग्वेज की अवेलेबल है ठीक है
और अगर आप लोग कोई ऐसे कहे कि हम पुस्तक हम खरीदना नहीं चाहते हम लोग कहाँ देंगे क्या देंगे तो हम लोग जो है माघ मेला कुंभ मेला यहाँ जाते हैं हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं जो कई भक्त हैं उन्होंने देखा भी होगा हम लोगों को फिर जैसा उन्होंने 1,60,000 गीता बांटी थी जो जरूरतमंद थे उन्होंने गीता उनको उन्होंने गीता दी थी तो इस तरीके से स्पॉन्सर भी कर सकते हैं हम लोग बात करेंगे आपसे
यहाँ आप बात भी करा सकते हैं उसके साथ साथ कृष्णा बुक वगैरह भी अवेलेबल है छोटी बुक्स भी है तो भगवद गीता और कृष्णा बुक आप साथ में भी ले जा सकते हैं जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं मैं अनाउंसमेंट कर लेता हूँ
और कोई नहीं आप लोग
टीवी साहू 100 मैंने 100 बता चुका हूँ
अच्छा
लाइब्रेरी
अच्छा 108 कर दो 108 हम लोग भी 100 बोलता था 108 करा देने
मेरा नाम राहुल त्यागी है और मैं 11 पुस्तकें
11 सौ गीता हरी
11
आप एक आर्डन कर दो आप तो कर सकते हैं भाजी आप कुछ एक आर्डन में 32 गीता होती है सर प्रॉब्लम आप दूसरों को भी दे सकते हैं ऐसा नहीं कि आप उनसे पैसे दे दीजिएगा अच्छा है जरूरी नहीं अपनी तरफ से सिर्फ करें आप बता दीजिए आप अगर अगर नहीं होंगे तो हम वापस दे देंगे ठीक है बताइए आपके साथ ही अच्छा ठीक है दोनों ऐसा 32 आराम से 32 तक हो गया आप अपने ससुराल क्या होता है ससुराल होता है महका होता है वहां भी दे सकते हैं महका
हरे कृष्ण गुरु जी 21 गीता का मैं हितेश
एक आधा ले लो पूरा 32 का होता है ठीक है 32 प्रभु जी की कर दीजिए
हरे कृष्ण प्रभु जी
हरे कृष्ण
मेरा नाम है दुर्गा चरण पात्र
दुर्गा
हाँ जी
दुर्गा चरण बहुत बढ़िया बात है तो आप खुले दिल से बोलिए
15 गीता सेल करूँ 15
32 दे दीजिए 32 का एक कारण है कम से कम एक कारण तो कर दीजिए आप हो जाएगा आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे हमारे कई जगह प्रोग्राम वगैरह होते हैं वहां पे जाके भी अगर किसी को दे सकते हैं आराम से कोई ले लेता है 110 रुपए गीता अभी गीता कभी हमारे बहुत से वो हैं रथत्रा हैं तो रथत्रा में जाके हमारे कई भक्त लोग करते हैं उसमें बड़ा आसान होता है हम लोग 5-5, 10-10 गीता भी देते हैं लोग ले लेते हैं रथत्रा में बड़ा आसान होता है या हरिनाम में जाते हैं उसमें बड़ा आसान होता है
कर दीजिए 32 सुनीता यादव
ठीक है बताइए 32 हो गया हाँ बताइए आप आपका तो पुराने भक्त हैं आप कितनी कितनी 500 अरे जाए बताए अगर ले भी लिया तो दोबारा बोल दीजिए यहाँ पे ताकि मतलब लोग अवस्था बढ़ेगी 500 वाले बैठे हुए हैं
500
एक किताब तिवारी वो तो हमारे साथ है अस्सी कर लेंगे और बस हो गया आज कई आज कम लोग आए हैं, बाकी जो है उन लोग अलग से क्लास कर सकते हैं, दूसरे लोग हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाकी
किसी के साथ क्लास को विराम देंगे।